लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत आज से हम क्रिस्तुस विवित, यीशु ख्रिस्त जीवित हैं, युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन की शुरुआत करेंगे। संत पापा फ्रांसिस अपने इस प्रेरितिक पत्र की शुरुआत में कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त जीवित हैं, वे हमारी आशा हैं और वे आश्चर्यजनक रूप से युवाओं को दुनिया में संचालित करते हैं। वे सारी चीजें जिनका स्पर्श वे करते अपने में युवा, नया, सजीव और जीवन से परिपूर्ण हो जाती हैं। संत पापा इस भांति युवाओं के लिए सबसे पहली बात यह कहना चाहते हैं कि यीशु ख्रिस्त जीवित हैं और वे चाहते हैं कि हम अपने में सजीव हों। इस भांति संत पापा युवाओं से आगे कहते हैं, यीशु आप में निवास करते, आपके साथ रहते हैं और आपका परित्याग कभी नहीं करते हैं। आप उनसे कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त सदैव आपके साथ रहते हैं। वे आपको बुलाते हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं, जिससे आप उनकी ओर लौट आएं और पुनः एक नए जीवन की शुरुआत करें। जब आपको अपने जीवन में दुखों के कारण ऐसा लगता है मानो आप बूढ़े हो जा रहे हैं, आपको क्रोध या भय की अनुभूति होती, आपको शंका या असफल होने का एहसास होता, तो ऐसी परिस्थिति में वे सदा आपके साथ रहती और आपको अपनी शक्ति और आशा से भर देते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि वे अति स्नेह से इस प्रेरितिक उद्बोधन की घोषणा सभी ख्रिस्तीय युवाओं के लिए करते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं के लिए उन विशेष बातों की याद दिलाना है जिनकी उत्पत्ति विश्वास में होती है, और साथ ही उन्हें अपने जीवन में पवित्रता की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करना है, जिससे युवक अपने व्यक्तिगत बुलाहटीय जीवन को निष्ठापूर्ण तरीके से जी सकें। लेकिन यह क्योंकि धर्म सभा का अंग है, मैं इसे सारी ईश प्रजा, याजकों और लोक धर्मियों के नाम एक संदेश स्वरूप घोषित करता हूँ, क्योंकि हम में से प्रत्येक जन को इस बात की चुनौती दी जाती है कि हम युवाओं से अपने को संयुक्त करते हुए उनके जीवन के संदर्भ में एक चिंतन करें। संत पापा कहते हैं, अतः कुछ परिस्थितियों में मैं युवाओं को सीधे तौर पर संबोधित करना चाहूँगा, वहीं दूसरे स्थानों पर मैं दूसरों के लिए भी कुछ बातों की ओर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा जो सामान्यतः कलिसियाई आत्ममंथन की रूप रेखा होगी। संत पापा फ्रांसिस लिखते हैं कि मैं अपने को विगत धर्म सभा में हुए वार्ताओं और चिंतनों से समृद्ध पाता हूँ, जिसमें कई बातें उभर कर हमारे सामने आई हैं। मैं सभी बातों को यहाँ समाहित तो नहीं कर सकता, लेकिन आप उसे अंतिम दस्तावेज में जरूर पढ़ सकते हैं। यद्यपि इस पत्र को लिखने के क्रम में मैंने इन बातों को संक्षेपित करने की कोशिश की है जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इस भांति मेरी बातों में विश्व के विश्वासों की आवाज ध्वनित होंगी जिन्होंने अपने विचारों को युवाओं की धर्म सभा में रखा है। वे युवा जो ख्रिस्तीय विश्वासी नहीं है परंतु जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया है, उनकी बातों ने भी मेरा ध्यान कुछ खास मुद्दों की ओर आकृष्ट किया है और विशेष रूप से नए सवालों को पूछने हेतु प्रेरित किया है। श्रोताओ, धर्म ग्रंथ बाइबल ख्रिस्तीय जीवन का सार प्रस्तुत करता है। ईश्वर का वचन हमारा जीवन है और उन्हीं ईश्वर के वचनों के अनुरूप हम अपने जीवन की सार्थकता को पाते हैं, जो हमारे जीवन को सच्चा अर्थ प्रदान करता है। अतः संत पापा धर्म ग्रंथ के आधार पर क्रिस्तुस विविध के पहले अध्याय में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ईश्वर का वचन युवाओं के लिए किस रूप में आता है। वे कहते हैं कि यह कई रूपों में हमें युवाओं के बारे में कहता है और विशेषकर कैसे यीशु ख्रिस्त उनके निकट आते और उनसे मिलते हैं। पुराने व्यवस्थान में एक समय जहां युवाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, कुछ लेख हैं जहां हम ईश्वर को उन्हें एक अलग नजरों से देखता हुआ पाते हैं। उदाहरण स्वरूप उत्पत्ति ग्रंथ में योसेफ अपने परिवार में सबसे छोटा था। यद्यपि ईश्वर उसे स्वप्न में बड़ी चीजों को दिखलाते हैं और करीबन 20 वर्ष की आयु में ही वह अपने भाइयों की तुलना में महत्वपूर्ण कार्यों में निर्धारित किया जाता है। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में गिदियोन में हम युवाओं के जीवन से संबंधित खुलेपन को पाते हैं, जो अपने जीवन में चाटुकारिता से प्रभावित नहीं होते हैं। जब उसे यह कहा जाता कि ईश्वर उसके साथ हैं, तो उत्तर में वह यह कहता है, लेकिन यदि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो क्यों ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटित हुई। ईश्वर इस बात से नाराज नहीं होते, बल्कि उसे निर्देशित करते हुए कहते हैं, अपने सामर्थ्य में आगे बढ़ो और इसराइल की रक्षा करो। सामुएल अपने में एक युवा था, यद्यपि ईश्वर उनसे बातें करते हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि वे एक व्यस्त व्यक्ति के द्वारा युवा हृदय को अपनी पुकार सुनने में सहायता करते हैं। हे प्रभु, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। इस भांति वह एक महान नबी बनता, जो मुक्ति के इतिहास की विकट परिस्थिति में अपनी ओर से एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। राजा सौल का बुलावा उस समय हुआ जब वह भी अपने में युवा था। राजा दाऊद का बुलावा उस समय हुआ जब वह एक किशोर था। नबी सामुएल जब इसराइल हेतु एक राजा की खोज कर रहे थे, एक व्यक्ति उसे अपने पुत्रों को उम्मीदवारों के रूप में पेश करता है, जो अपने में बड़े और अनुभवी थे। लेकिन नबी सामुएल ने कहा कि ईश्वर ने दाऊद को चुना है, जो अपने भेड़ों की देखरेख कर रहा होता है। मानव अपने विचारों के अनुरूप बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर हमारे हृदयों को देखते हैं। युवाओं की महिमा उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक या दूसरों को प्रभावित करने की तुलना में उनके हृदय में होती है। राजा सुलेमान जब अपने पिता का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, तो वह अपने को खोया हुआ पाता है। उन्होंने ईश्वर से कहा, मैं तो एक युवा मात्र हूँ, मुझे किस तरह कार्य करना है मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर भी कार्य करने की जीवटता ने उन्हें ईश्वर से विवेक की मांग करने हेतु प्रेरित किया और वह अपने कार्यों को निष्ठापूर्ण तरीके से किया। ऐसे ही बातें नबी यिर्मयाह के साथ होती हैं, जो युवा होने पर भी अपने लोगों के लिए कार्य करने हेतु बुलाए जाते हैं। अपने में भयभीत वे कहते हैं, ओह मेरे ईश्वर, मैं सचमुच नहीं जानता कि मुझे कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं तो अभी बच्चा हूँ। लेकिन ईश्वर ने उन्हें कहा कि तुम यह ना कहो कि मैं एक बच्चा हूँ, तुम उनसे नहीं डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। नबी यिर्मयाह के प्रेरित कार्य हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देते हैं कि जब ईश्वर युवाओं के संग होते, तो जीवन में कैसे साहसिक कार्य संपन्न होते हैं। नमान की सेविका, जो अपरिचित देश की यहूदी लड़की थी, किस तरह विश्वास में अपने स्वामी के समक्ष पेश होती और उन्हें अपनी बीमारी से चंगाई प्राप्त करने में मदद करती है। जवान युवती रूथ उदारता में अपनी सास के संग कठिन परिस्थिति में भी रहने का निश्चय करती है और अपने जीवन में साहस पूर्वक आगे बढ़ती है।
तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 20 जनवरी के ट्वीट संदेश में सच्चा ख्रिस्ते बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने संदेश में लिखा, ख्रिस्ते होने का अर्थ विचारधारा द्वारा अपनी परिभाषा देना नहीं है जिससे कि आगे बढ़ा जा सके। ख्रिस्ते होने का अर्थ है मुक्त होना, क्योंकि हम साहसी हैं, क्योंकि हम प्रभु के शब्दों के प्रति विनम्र हैं। कलीसियाई पेशा में बढ़ने के लिए प्रतिष्ठा की खोज ख्रिस्ते नहीं है। उक्त बात संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को वैटिकन के प्रेरितिक आवास संत माता स्थित प्रार्थनालय में ख्रिस्ताग अर्पित करते हुए प्रवचन में कही। उन्होंने कहा, लोक धर्मी पुरोहित या धर्मदर्श होना प्रभु से मिला मुक्त वरदान है। आप इसे नहीं खरीद सकते और पौत्रता इस वरदान की रक्षा करना है जो हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं करता। प्रवचन में संत पापा ने भजन अनुवाक्य एवं सामुएल के ग्रंथ से लिए गए पाठ पर चिंतन किया। स्तोत्र 88 दाऊद का इसराइल के राजा के रूप में नियुक्ति की याद दिलाता है, जिनकी नियुक्ति साउल के अवज्ञा के कारण प्रभु द्वारा उनके बहिष्कार के बाद हुई थी। पहले पाठ में प्रभु सामुएल को यिशे के पुत्र बेतलहमिता को राजा के रूप में अभिषेक करने भेजता है। अभिषेक ईश्वर द्वारा चुने जाने की ओर इंगित करता है। आज भी पुरोहितों एवं धर्मदर्शों का अभिषेक किया जाता है। संत पापा ने याद किया कि सभी ख्रिस्ते बपतिस्मा में पौत्र तेल से अभिषिक्त किए जाते हैं। ईश्वर ने सामुएल को सलाह दी कि वह शारीरिक पक्ष को देखकर ना रुक जाए, क्योंकि मनुष्य जो देखता है उसका अधिक महत्व नहीं होता। वास्तव में मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु ईश्वर हृदय देखते हैं। संत पापा ने कहा कि यदि हम ख्रिस्ते ईश्वर की प्रजा को भूल जाते हैं, चाहे वे गैर ख्रिस्ते ही क्यों ना हो, यदि पुरोहित अपने पल्लीवासियों पर ध्यान नहीं देते, यदि धर्मदर्श अपने लोगों को भूल जाते हैं और अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगते हैं, तब वे पौत्र आत्मा की उपेक्षा करते हैं। संत पापा फ्रांसिस 23 फरवरी को भूमध्य सागर शांति के सरहद पर चिंतन एवं आध्यात्मिक सभा में भाग लेने बरी की यात्रा करेंगे। संत पापा की एक दिवसीय बारी यात्रा के कार्यक्रम को वैटिकन ने प्रकाशित कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 7 बजे संत पापा हेलीकॉप्टर द्वारा वैटिकन से प्रस्थान करेंगे और 8:15 बजे बारी पहुंचेंगे। 8:30 बजे संत निकोला महागिरजा घर में भूमध्य सागर के धर्मदर्शों से मुलाकात करेंगे। वे 11:15 बजे कोर्सो विक्टोरियो इमानुएल द्वितीय में ख्रिस्ताग अर्पित करेंगे एवं देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे और कार्यक्रम के अंत में 12:30 बजे संत पापा क्रिस्टोफर कोलंबस प्रांगण से वैटिकन के लिए रवाना होंगे। इस बीच संत पापा फ्रांसिस ने विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर मंच के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर क्लॉस स्कॉर्प को एक संदेश भेजकर उन्हें अपनी प्रार्थना में शुभकामनाएं अर्पित की। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वर्षगांठ समारोह में परमधम पीठ का प्रतिनिधित्व समग्र मानव विकास के लिए गठित परमधम पीठी परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल पीटर टक्शन कर रहे हैं। संत पापा ने संदेश में कहा है, इन सालों में विश्व आर्थिक मंच ने एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नए और प्रभावी तरीके खोजने के लिए विविध हितधारकों के व्यवसाय के लिए एक अवसर प्रदान किया है। इसने एक रणभूमि प्रदान की है जहां राजनीतिक इच्छा और आपसी सहयोग को मार्गदर्शन और शक्ति मिल सकती है, ताकि अलगाववाद, व्यक्तिवाद एवं वैचारिक उपनिवेशवाद जो आधुनिक युग में अधिक प्रभावी है उससे ऊपर उठा जा सके। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु है, एक सामंजस्यपूर्ण एवं सतत विकास के लिए हितधारक, सभी स्तरों पर अधिक से अधिक जुड़ाव की आवश्यकता की ओर ध्यान, ताकि मानवता द्वारा सामना किए जाने वाले विविध मुद्दों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। संत पापा ने विगत 5 दशकों में आर्थिक से श्रम बाजार, डिजिटल तकनीकी एवं पर्यावरण में हुए परिवर्तनों के मद्देनजर आज की चुनौतियों पर गौर करते हुए कहा है कि आज की चुनौतियां अर्ध शताब्दी पहले की चुनौतियों से भिन्न हैं। जब हम एक नया दशक शुरू कर रहे हैं तब कई सुविधाएं प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने संदेश में लिखा है कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे की सहायता करना इसी नैतिक सच्चाई से प्रस्फुटित होती है। अतः सत्ता अथवा लाभ से बढ़कर मानव व्यक्ति को ही प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कर्तव्य व्यापार एवं सरकार पर निर्भर करता है और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के समान समाधानों की तलाश में अपरिहार्य है। परिणामतः अल्पकालिक तकनीकी या आर्थिक पहुंच तथा वर्तमान समस्याओं के हल या भविष्य के प्रयासों का प्रस्ताव रखने के लिए नैतिक आयाम पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर भौतिकवादी या उपयोगितावादी दर्शन बहुधा व्यक्तिगत लाभ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके द्वारा सहानुभूति एवं उदारता में कमी आती है और साथ ही साथ अन्याय में वृद्धि होती है, जबकि एक अभिन्न मानव विकास तभी फल फूल सकता है जब मानव परिवार के सभी सदस्यों को शामिल किया जाए और आम लोगों को भी आगे बढ़ने में सहयोग दिया जाए। संत पापा ने याद दिलाया कि विकास की खोज में हम दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को न रौंदे, क्योंकि ऐसा कर हम अपने ही मूल्य को कमजोर करते हैं। संत पापा ने विश्व आर्थिक मंच के 50 वर्षों की उपलब्धियों पर गौर करते हुए उम्मीद जताई कि मंच के वर्तमान एवं भावी सदस्य अपने मन में इस बात को रख पाएंगे कि उन्हें अपने भाई बहनों के अभिन्न विकास की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। तब संत पापा ने शुभकामनाएं दी कि उनका विचार विमर्श उन्हें लोगों के प्रति एकात्मकता में वृद्धि की ओर अग्रसर करे, विशेषकर जो अत्यंत जरूरतमंद हैं, जो सामाजिक और आर्थिक अन्याय का सामना कर रहे हैं और जिनका अस्तित्व भी खतरे में है। उधर बांग्लादेश में आयोजित 35वें राष्ट्रीय युवा दिवस में करीब 400 युवाओं ने भाग लिया। युवा दिवस 15 से 18 जनवरी को चाटोग्राम धम प्रांत के डियांग स्थित मरियम आश्रम में संपन्न हुआ। इसकी विषय वस्तु थी, युवक मैं तुमसे कहता हूँ उठो। राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रतिभागी राजशाही धम प्रांत की एमलेशा ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उसने महसूस किया कि उसका जीवन ईश्वर का वरदान है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।